الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں آج کل ہم علوم التفسیر پڑھ رہے ہیں، جو کہ اصلا تو ہم نے معارف القرآن کی جلد نمبر ایک سے مقدمہ سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور وہ پڑھتے پڑھتے پھر ہم جب علوم التفسیر پر آئے، یعنی تفسیر کے قرآن کریم کی تفسیر کے علوم پر آئے، تو پھر ہم نے وہاں سے پڑھنے کے بعد اب جو ہے وہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو اصل کتاب تھی، جس کا کہ خلاصہ انہوں نے مقدمہ معارف القرآن کے اندر شامل کیا تھا، تو اب ہم نے اس اصل کتاب میں سے کچھ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو اس کے پس منظر میں تھوڑا سا یعنی ریپیٹیشن کی خاطر کہ تفسیر قرآن مجید کی وہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے. ایک تفسیر ہوتی ہے بالروایہ، روایات کے ذریعے سے تفسیر، روایات، اور روایات سے یہاں پر قصے کہانی کی روایات نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو کہ مروی ہو کر کے، نیریٹ ہو کر کے ہم تک پہنچی ہیں، نیریٹڈ، ٹھیک ہے، تو ان کو روایات کہا جاتا ہے دینی پس منظر میں. اور ان میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ خود قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، خود قرآن مجید ہی روایت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تو تفسیر بال روایہ کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید سے تفسیر کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری درجے کی روایت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ، تو اس سے تفسیر کی جاتی ہے. تیسرے درجے کی روایت جو ہے وہ آثار صحابہ کرام یا اقوال صحابہ کرام. اس کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عربی زبان کی جو لغت ہوتی ہے یا ادب اور اس کی جو تفصیلات ہوتی ہیں، سب تفسیر بالروایہ ہے. پھر اس کے بعد تفسیر بالرائے، رائے سے تفسیر کرنا. تو رائے سے تفسیر کرنا یعنی اپنے اوپینین سے، اپنی ریسرچ سے تفسیر کرنا، روایات سے ہٹ کر کے، یعنی روایات کے علاوہ، ہٹ کر کے تو اصول کے خلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ. تو اس میں پھر جو نبی علیہ السلام کا قول ہوتا ہے کہ جس نے اپنی جو مشہور قول اس سلسلے میں نقل کیا جاتا ہے، جو تقی عثمانی صاحب نے بھی نقل کیا ایک سے زیادہ مرتبہ، کہ جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کہے تو اس نے غلطی کری. تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تفسیر بال رائے جو ہے یہ بالکل ہی نہیں کر سکتے. تو اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے. پھر اس کے بعد یعنی کر سکتے ہیں لیکن اصول و قواعد کے تحت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد تفسیر میں گمراہی کے اسباب ہم نے اس کتاب میں سے پڑھنے شروع کیے تھے، یعنی غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے انسان قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، گمراہی، راستہ گم کر بیٹھتا ہے اور غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اس کی کیا ریزنز ہیں. تو سب سے پہلا سبب نااہلیت، کہ وہ اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہوتا، اس نے کوالیفائی ہی نہیں کیا ہوتا تفسیر کرنے کے لیے. پھر اب یہ علم جو فرمایا کہ جی اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، بغیر علم کے جو ہے وہ تفسیر نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر پھر غلط فہمیاں یا اشکالات یا آبجیکشنز وہ اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں ذہن میں کسی کے بھی اٹھتے ہیں کہ بھئی ایسے کیسے، جب اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ اتنا مشکل کیوں اس کی تفسیر کرنا، اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے حضرت نے پھر رفع کرنا شروع کیا، اٹھانا شروع کیا، یعنی ان کو کلیئرفائی کرنا شروع کیا. تو اس میں سب سے پہلی غلط فہمی کیا تھی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو، تو پھر کیسے مشکل، تو اس کو ہم نے پڑھ لیا. और फिर उसके बाद उलमा और इजारादारी की, जी ये जो मौलवियों ने जो है ना मोनोपली बनाई हुई है, अपनी इजारादारी बनाई हुई है, ये चाहते ही नहीं है कि कोई जो है वो अल्लाह के कलाम को समझे, तो इस वजह से शर्तें लगाते रहते हैं और उसको उसको खौफनाक बनाते रहते हैं कि जहन्नुम में चले जाओगे, मर जाओगे और गुमराह हो जाओगे और शैतान के हवाले हो जाओगे, इस तरह से हमें डराते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दिया, और इसी को हम अभी मजीद आगे पढ़ रहे हैं, उलमा और पापाइयत के उनवान के तहत, कि इसी उनवान को इस तरह से भी ताबीर किया जाता है कि ये तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा होता है कि उनके जो पोप्स होते हैं उनके पास सारी की सारी अथॉरिटी होती है उनकी किताबों की तफसीर करने की, और अवाम के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो ये तो मौलवियों ने ईसाइत वाला सिलसिला जो है वो दीन इस्लाम के अंदर भी शुरू कर दिया, जिसकी की कोई गुंजाइश नहीं बनती। के तो वो हमने फिर कितने सफ़े पढ़ लिए हैं, दो चार चार सफ़े तकरीबन पढ़ चुके हैं, तो पेज नंबर 372, 372 सफ़े के ऊपर हम थे पिछली क्लास में, कि फरमाते हैं कि ये जो ईसाई अकायद है ना, जिसकी बुनियाद पर उनके यहाँ ये पोप का पूरा ये सिस्टम है, तो उसमें पोप को जो है ना वो बहुत बड़े बड़े जो है वो यानी मनसब और मर्तबे हासिल होते हैं, कि वो यानी मासूम होता है, उनके नज़दीक पोप जो है वो मासूम है, यानी उससे गुनाह हो ही नहीं सकता, उससे खता हो ही नहीं सकती, जबकि दीन इस्लाम के अंदर ये वाला मर्तबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबियों को हासिल है। ठीक है, अगर नबी जो है वही खताकार हो गया नाउज बिल्ला, या वही जो है वो गुनाहों का मुर्तकिब हो गया, तो फिर हिदायत तो फिर मशकूक हो गई ना, हिदायत तो मशकूक हो गई। ठीक है, तो नबी का मासूम होना तो ये तो बात बनती है, वरना तो फिर हिदायत ही, वरना अल्लाह ताला डायरेक्ट तो आकर के कलाम नहीं करते इंसानों से। ठीक है, तो नबी के वास्ते ही से सारी की सारी हिदायत आती है, लेकिन ईसाई अगरचे के नबियों को मानते हैं, ईसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, सारे नबियों को मानते हैं, हमारे नबी अलैहि सलाम के अलावा सबको मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने उनकी मासूमियत के ऊपर इक्तफा नहीं किया कि नबियों की मासूमियत पर इक्तफा करें, बल्कि उन्होंने जो है वो पोप्स को भी जो है वो मासूम करार देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी को आगे फरमाया था कि इसके बरखिलाफ ये तमाम उलमाए इस्लाम का मुत्तफिक अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद कोई फर्द मासूम नहीं है और हर एक से गलती हो सकती है, चुनाचे उलमाए इस्लाम पूरी आज़ादी से एक दूसरे पर तनकीद करते आए हैं, और ये सिलसिला अहदे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अब तक जारी है। इसी का नतीजा है कि कोई मशहूर से मशहूर आलिम अगर कुरान और सुन्नत की तशरीह में कोई गलती करे तो दूसरे तमाम उलमा उसकी गिरफ्त करके उम्मत को उसके बद नतायज से, बुरे नतायज से महफूज कर सकते हैं, क्योंकि गलती जब कोई आलिम करता है तो फिर अवाम समझती है कि भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता होगा, जब भी तो इन्होंने आलम दीन साहब ने ये गाला काम किया है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है ना वो रोकना शदीद जरूरी होता है, वरना बहुत बुरे नतायज निकलेंगे और दीन के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, दीन की डेफिनेशंस में, अकायद में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। ठीक है, और इसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उलमा जो है वो फिर इसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो खैर इस पर बात हो चुकी है, आगे नंबर 4, चौथा पॉइंट हजरत ने लिखा कि फिर कलीसिया, यानी हजरत जो है ना वो जो पापाइयत का क्रिश्चियन सिस्टम है उसको बड़े इलेबोरेशन के साथ जो है ना वो बयान कर रहे हैं, बड़ा यानी खोल रहे हैं उसको, तो उसकी चौथी तफसील लिखते हैं कि कलीसा में जो 70 कार्डिनल्स पोप का इंतखाब करते हैं और उसको मशवरा देते हैं, उनकी नामजदगी खुद पोप साहब तने तनहा करते हैं। ठीक है, यानी पिछले जो कार्डिनल्स थे वो पोप का इंतखाब करते हैं, और फिर जो पोप जो कार्डिनल जो होते हैं वो जैसे एक्सपायर हो जाते हैं या उनके जो है वो टेन्योर खत्म हो जाता है, तो फिर पोप साहब ही तने तनहा जो है वो नए कार्डिनल्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चुनाचे ब्रिटानिका के अंदर है कि कार्डिनल्स की नामजदगी आजकल तने तनहा पोप का काम है, पोप जिन अफराद को खुफिया तौर पर चुनता है उनके नामों की इशाअत से ये काम मुकम्मल हो जाता है, यानी वो अपना सिलेक्शन प्रोसीजर करता है और फिर उसके बाद जब वो उनका नाम अनाउंस कर देता है, तो बस अब हो गया खत्म बात, हो गए वो सेलेक्ट। उसके लिए किसी और जाब्ते की पाबंदी जरूरी नहीं है, यानी उनके क्रेडेंशियल्स को देखना, उनकी क्वालिफिकेशंस को देखना नहीं, बस पोप ने अपॉइंट कर दिया सो कर दिया। इसी तरह सेक्रेट कॉलेज की वोटिंग या मंजूरी की भी चंदा जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका यानी जो एक मुकद्दस कॉलेज है जिसमें पढ़ करके जो है वो कार्डिनल्स हैं, वो अपने क्वालिफिकेशन वगैरह उनकी जो भी होती है, तो उसकी वोटिंग या मंजूरी वगैरह की पोप को भी जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा, अच्छा इसको रेफरेंस भी दिया एनसाइक्लोपीडिया यानी फुटनोट में, ब्रिटानिका सफा नंबर 855 जिल्द 4 मकाला कार्डिनल, ठीक है, तो कार्डिनल के ऊपर जो वो रिसर्च मजमून एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर है, वो इस चौथी जिल्द के अंदर यानी पूरा ये फुटनोट्स के अंदर बहुत सारे इन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं अपने इन जो अपने आप ही चीजें नकल करी हैं इनके रेफरेंसेस के साथ। इसके अलावा कलीसा के ये अरबाब इख्तदार जो मजहब के स्याहो सफेद के मालिक होते हैं, उनका तकर्रुर महज अहलियत की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ इलाकाई तासुबात कार फरमा होते हैं, यानी बाकायदा कोटा सिस्टम्स होते हैं कि जी फलाने जुबान बोलने वाले, फलाने रंग नस्ल वाले, इनको इतना सेलेक्ट किया जाएगा, उनको इतना सेलेक्ट किया जाएगा, तो प्योरली इल्मी अहलियत नहीं होती, ठीक है। ब्रिटानिका ही का एक और बयान मुलाहजा हो कि रियासत हाय मुतहदा अमरीका, हाय ठीक है, हम तो पहले इसको पढ़ते थे हाई क्यों करते हैं, बहरहाल पता चला कि ये जमा उर्दू जुबान में जिस लफ्ज का जमा ना हो अलग, तो फिर उसके लिए हाई लगा दिया जाता है उसके साथ, तो रियासत हाय मुतहदा यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कलीसा दुनिया की हर कौम के मुख्तलिफ ग्रुपों से मुरक्कब होता है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाली अकवाम अक्सरियत में होती हैं। आजकल अंग्रेजी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और इसमें सबसे ज्यादा अमल दखल जो है वो या तो जरा सा माजी में चले जाएं तो ब्रिटिश कॉलोनीज जो थीं वो सबसे ज्यादा तादाद में, सबसे बड़ा जो यानी जो कॉलोनियल रूल था दुनिया के अंदर वो ब्रिटेन्स का था, फिर उनके बाद जो है वो फ्रेंच की बारी आती है और डच की बारी आती है और फिर जो है वो स्पेनियर्स की बारी आती है, स्पेनिश स्पेन की, ठीक है, तो उनके जो है उनकी भी कॉलोनीज थी लेकिन उतनी बड़ी किसी की कॉलोनी नहीं बन सकी जितनी कि ब्रिटिश की बन सकी। तो एक तो ब्रिटेन जो है वो अपना अपनी जुबान जाहिर है उनकी जुबान अंग्रेजी थी, तो अंग्रेजी का रिवाज सबसे ज्यादा हुआ। अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे फ्रेंच का रिवाज ज्यादा है, कि जो मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्रीज हैं यहाँ पे फ्रेंच जो है ना वो ज्यादा प्रेवलेंट होती है, लेकिन ब्रिटेन का जो है वो ज्यादा। अब पॉपुलेशन भी कहाँ की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश की, और वहां पर तो ब्रिटेन
पहले पहले अच्छा
था, तो सबसे ज्यादा तादाद जो है वो दुनिया में इन्हीं लोगों की होती है, हमारी ही होती है बेसिकली, तो हम बरतान अंग्रेजी। अच्छा फिर उसके बाद दूसरी कौन सी चीज थी जिससे कि अंग्रेजी जुबान दुनिया में सबसे ज्यादा राइज हो गई, वो फिर हॉलीवुड, ठीक है, ये अमेरिका जो है उसकी भी असल बुनियादी जुबान अंग्रेजी, ठीक है, वहां पे भी जो है वो वहां से जो यूरोप से लोग माइग्रेट करके गए तो सबसे ज्यादा गालिब जो है वो वही रहे, बाकी भी लोग यूरोप से माइग्रेट करके अमेरिका पहुंचे हैं लेकिन उनकी जुबानें जो है वो राइज नहीं हो सकी इतनी ज्यादा जितनी के अंग्रेजी राइज हो गई। फिर जब उन्होंने अपना ये यानी तफरी वाला सिस्टम हॉलीवुड के अंदर बनाया, तो अब वो भी अंग्रेजी बेस्ड ज्यादा, जाहिर तकरीबन सारे अंग्रेजी बेस्ड है, तो उसकी जितनी फिल्में बनती हैं, जितने प्रोग्राम बनते हैं, जितने उसके कॉमेडीज बनती हैं, सब कुछ हॉलीवुड की हो बल्कि किसी दूसरे शहर की भी हो, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैलती हैं, तो बच्चा बच्चा जो है वो उनको देख करके अंग्रेजी सीख लेता है अगर स्कूल में ना भी सीखा हो तो। फिर बर्तानिया ने जब अपनी कॉलोनीज को जो है वो श्रिंक किया, फिजिकली श्रिंक किया, तो पीछे जो है ना वो अपना तालीमी निजाम छोड़ गया, ठीक है, और ऐसा तालीमी निजाम छोड़ करके गया कि जिसकी बुनियाद पर आज भी ये बात कही जा सकती है कि सल्तनत बरतानिया का सूरज कहीं गुरूब नहीं होता, पहले भी गुरूब नहीं होता था और आज भी गुरूब नहीं होता, पहले जो है वो डंडे की जोर के ऊपर गुरूब नहीं होता था, और आप जो है और आज जो है वो दिलो दिमाग की चाहत के साथ गुरूब नहीं होता, राइट, पूरी दुनिया के अंदर जो है ये ब्रिटिश काउंसिल्स और इनके जो है वो कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम और जो है वो ऑक्सफोर्ड का सिस्टम है, सॉरी दुनिया, चाहे अमेरिका, मैं पहले समझता था शायद अमेरिका में नहीं होता होगा क्योंकि अमेरिका जो है वो इनके ऊपर गालिब है, बर्तानिया के ऊपर नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर भी पता चला वहां पर भी सारे जीसीएसई दे रहे होते हैं अमेरिका के अंदर भी दे रहे होते हैं, वहां पर भी इसके सेंटर्स पढ़ते हैं, तो पूरी दुनिया, तो अंग्रेजी, तो बहरहाल बात कहां से चली थी कि अंग्रेजी बोलने वाली अकवाम अक्सरियत में होती है। 19वीं सदी के वस्त तक आयरिश और जर्मन अकवाम को सबसे ज्यादा कोटा हासिल था, जब तक अंग्रेजी इतनी गालिब नहीं आई थी, तो उससे पहले आयरिश और जर्मन्स को, उनके अलावा मशरकी कैथोलिक अकवाम मसलन यूनानी और शामी और आर्मेनियंस एक काबिले लिहाज तनासुब से मौजूद हैं। शाम जो है ये भी जो रोमन एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर जो था, ये सारे के सारे ये कैथोलिक्स थे, तो बल्कि उस जमाने में तो कैथोलिसिज्म जो है वो शायद इतना अलग से, क्योंकि यही चीज होती थी रोम में, तो बहरहाल ग्रीस वगैरह जो है सब कैथोलिक्स। तो इस मुख्तसर से तारुफ के बाद पापाई निज़ाम का मवाजना उलमाए इस्लाम से कीजिए, तो दोनों में जमीन और आसमान का तफावत है, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उलमाए उस इस्लाम की ना कोई लगी बंधी तंजीम है, जमीयत उलमाए इस्लाम, चाहे वो हिंद में हो जमीयत उलमाए हिंद के नाम से हो, चाहे जो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम से हो, ये सिर्फ एक पार्लियामेंटर यानी एक सियासत के अंदर जो है वो उलमा को रिप्रेजेंट करने वाली एक तंजीम तो है, जिसको कोई वोट शोट वैसे भी कोई नहीं देता, ठीक है, तो उनसे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत ये नहीं है कि ये जो है वो कुरान की तफसीर, JUI की तफसीर है, JUP की तफसीर जो वो बरेलवियों की है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, तो उनकी कोई तफसीर आ रही है भाई मार्केट के अंदर, नहीं, JUI JUP जमात इस्लामी तंजीम इस्लामी जो भी तंजीम हो किसी की कोई तफसीर नहीं, ठीक है, तो ना कोई लगी बंधी तंजीम है ना कोई फर्द वाहिद मजहबी मामलात में हाकिम आला है, ठीक है, जिस तरह आयतुल्ला शियाओं के यहाँ होते हैं और वो क्या नाम है उनका इस्माइली होते हैं, या पिछली दफा आप में से किसी ने लिखा भी था ना भोरी, तो उनके जो होते हैं बुरहानुद्दीन, वो ये सब कोई नहीं है इस्लाम के अंदर, तो ना कोई शख्सियत मासूमियत और गलतियों से पाक होने का दावेदार है कि दावेदार है, इन शियाओं ने बनाया हुआ तो है अपने इमामों को जो है वो मासूम, लेकिन उन्होंने खुद तो कभी क्लेम भी नहीं किया था और ना कोई दूसरा उनको मानता है मासूम, ठीक है, ना उलमा की कोई मखसूस तादाद मुकर्रर है जिस पर इजाफा ना हो सकता हो, ठीक है, अब जो माशाल्लाह उम्मत के हक में बहुत फिक्रमंद होते हैं ना, तो उनको जो है ना ये बहुत ज्यादा सूझती है कि जी फिरकावारियत नहीं होनी चाहिए और शिया सुन्नी भाई भाई, अमेरिका ने आग लगाई वाला मसला सारा का सारा है ना, तो अब उनको तो ये बातें हजम नहीं होती कि शियाओं ने मासूमियत और शियाओं के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर कुछ दिलचस्पी है अपने दीन से, है उम्मत से ज्यादा अपने आखिरत से अगर दिलचस्पी है ना उनको, तो उनको चाहिए कि एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हजरत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है, तो उनकी एक किताब है उसका नाम है दो मुतजाद तस्वीरें, दो मुतजाद, मुतजाद का मतलब होता है ऑपोजिट तस्वीरें, ठीक है, उसका मुतालिया करें तब उनको समझ में आएगी बात कि ये जो रवाफिज का जो दीन है ये कितना ऑपोजिट है, ये बिल्कुल ऑपोजिट, उन्होंने अपनी किताब का नाम ही ऐसा रखा, दो दो मुतजाद तस्वीरें, ठीक है, तो भाई फिरका वारियत का यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ पे बुनियादी अकायद का मसला है, बुनियादी बिल्कुल सोच ही ऑपोजिट है वहां पर, अब यहाँ पे जितनी ये हजरत बातें कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो बातें कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी गलत साबित होती है, कहाँ गलत साबित होती है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गलत साबित हो जाते हैं कहाँ पर, शियाइज्म के अंदर, ये गलत बिल्कुल बातें गलत कर रहे हैं, कब गलत साबित होते हैं, जब आप शियाइज्म की बात करें, ठीक है, वहां पे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ईसाइयत वाला मामला है, बिल्कुल वही मामला है वहां पे। ठीक है, अब आप खुद ही सोच लें क्या करना है। तो बहरहाल अल्लाह नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, वैसे तो वो बैंड है, क्यों बैंड है क्योंकि आपको पता है क्यों बैंड है, तो लेकिन है इंडिया के अंदर तो मिलती है, वहां पे तो अभी तक शायद बैंडिंग हुई है। एनीवे anyway, तो उलमाए इस्लाम की तो ऐसी कोई लगी बंदी तंजीम नहीं, ठीक है ना, ना कोई फर्द वाहिद मजहबी मामलात में हाकिम आला है, ना कोई शख्स मासूमियत और गलतियों से पाक होने का दावेदार है, ठीक है, ना उलमा की कोई मखसूस तादाद मुकर्रर है जिस पर इजाफा ना हो सकता हो, है ना, 12 है तो बस 12 ही रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है इस्लाम के अंदर, तो ना कोई शख्स दूसरे उलमा की तनकीद से बालातर है, ना आलिम के मनसब पर फाइज होने के लिए किसी फर्द वाहिद की इजाजत और मंजूरी दरकार है, ठीक है, कि भाई जब तक वो इजाजत नहीं देंगे उस वक्त जो है वो कोई आलिम कहला ही नहीं सकता। पहली बात तो ये कि कोई ऐसा सर्टिफिकेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी है भी नहीं, ठीक है ना, ये विफाकुल मदारिस वाले तो बस एक आपको प्रूफ देते हैं कि जी आपने जो है ना वो पढ़ ली है ये सारी किताबें, तो आपको एक सनद मिल गई कि हाँ जी आपने पढ़ ली है, ठीक है, लेकिन आपको बहैसियत आलिम के कबूल किया जाएगा कि नहीं कबूल किया जाएगा, इसका तो कोई कोई गारंटी नहीं है विफाकुल मदारिस की तरफ से या किसी दूसरे मदरसे की तरफ से, कोई गारंटी नहीं है कि यू विल बी एक्सेप्टेड एज एन आलिम और नॉट, ठीक है। तो सनद क्या होती है, सनद तो वैसे भी, वैसे तो मदारिस के अंदर ये चीज इतनी अप्लाई नहीं होती, लेकिन स्कूल कॉलेजों के अंदर जो सनद मिलती है, जो सर्टिफिकेशन मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं लोग, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ये तो जो फीस आपने पे करी होती है ना, ये उसकी रसीद होती है, ठीक है ना, जो आपने फीस पे करी होती है उसकी रसीद होती है सनद, हाँ भी वाकई फीस पे करी थी और एग्जाम में बैठे थे, एग्जाम की फीस पे करी थी, ठीक है, तो मदारिस के अंदर चूंकि फीस ही पे नहीं करनी होती, इस वजह से उसकी सनद, उसकी जो है वो रसीद भी इसको नहीं कह सकते, लेकिन वो बेसिकली एक सिर्फ ये, वो भी एक तरह की रसीद ही है कि जी हाँ ये इन्होंने वक्त लगाया है, ठीक है ना, ये आते रहे हैं, इनकी अटेंडेंस जो है वो मदरसे के अंदर लगती रही है, हाजिरी लगती रही है, और इन्होंने जो है ना वो इम्तिहान दिया है, और इम्तिहान के अंदर इतना इन्होंने सवाल के जवाब लिख दिए थे कि इनको जो है वो पासिंग मार्क्स, कम अज कम पासिंग मार्क्स मिल गए, तब इनको जो है वो सनद मिल जाएगी, दैट्स इट। तो ना आलिम के मनसब पर फायज होने के लिए किसी फर्द वाहिद की इजाजत और मंजूरी दरकार है, ना इस मनसब के लिए किसी रंग व नसल या जुबान व वतन की कोई कैद है, या अंग्रेजी बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले या फारसी बोलने वालों की जो है वो इतना कोटा होगा और अरबों का इतना कोटा होगा उलमा की तंजीम के अंदर, बल्कि तारीख इस्लाम में अक्सर सियासत अरबों के पास रही, ठीक है, यानी सहाबा कराम अरब थे, खुलफाए राशिदीन, फिर उनके बाद जो है वो उमवी खुलफा सारे के सारे अरब थे, फिर जो है वो अब्बासी जो खानदान था वो पूरा को पूरा खालिसतन अरब था, तो ये सियासी हुक्मरानी जो है वो अरबों के पास रही है, लेकिन उन्हीं उन्हीं दौर में उलमा अजमियों बल्कि गुलामों के खानदान से पैदा होते रहे, नॉन अरब्स, वो उलमा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, ये कौन थे, ये अजमी थे, ठीक है, गुलामों के खानदान से ये तो नहीं थे लेकिन अजमी जरूर थे, यानी नॉन अरब से ये, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम अबू यूसुफ भी गालबन, या और भी बहुत सारे, और गुलामों के खानदान से पैदा होते रहे, तो पूरा आलम इस्लाम उनके इल्म व फजल और तकद्दस व तकवा का लोहा मानता रहा, यानी उस वक्त के खलीफा जो है ना वो आजाद करदा गुलाम, बल्कि इल्म हासिल करने के लिए तो कोई आजादी की भी शर्त नहीं थी, इवन गुलाम होते हुए भी आप इल्म हासिल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जो मालिक ने जिम्मेदारी लगाई है वो गुलाम ने पूरी करनी है, ठीक है, लेकिन अगर मालिक की तरफ से इजाजत मिल गई कि अब आप जो है वो दर्स देना शुरू कर दें, तो अब गुलाम साहब जो इल्म हासिल करते रहे वो दर्स भी देना शुरू कर दें, ठीक है ना, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर कि नहीं जी दूसरे लोग इनकी बात नहीं सुन सकते क्योंकि ये तो गुलाम हैं या गुलाम थे, नहीं, इसके लिए सिर्फ इल्म की जरूरत है, ये नहीं कि आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और इतने बड़े बड़े उलमा नाम जो है बस ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन बड़े बड़े नाम है इसके इसके ना, खानदान गुनामा के, और पूरा आलम इस्लाम उनके इल्म व फजल और तकद्दस व तकवा का लोहा मानता रहा। लिहाजा जब ये बात कही जाती है कि कुरान सुन्नत के उलूम में दखल अंदाजी के लिए इन उलूम में बसीरत व महारत दरकार है, तो उस पर पापाइयत का इल्ज़ाम आयद कर देना हकीकत और इंसाफ के साथ एक संगीन मजाक के अलावा कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है। इसके बजाय दर हकीकत दीनी उलूम की मिसाल दूसरे उलूम की सी है, ठीक है। यानी इस एतबार से देखा जाए तो दीनी उलूम और दुनियावी उलूम जो है वो उनके यहाँ सेम स्टैंडर्ड्स हैं, कि जिस तरह दुनिया के तमाम उलूम फनून के बारे में किसी शख्स की बात उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक उसने इस मुतअल्लिका इल्म को माहिर असातिज़ा से हासिल करके उनका अमली तजुर्बा हासिल न किया हो, इसी तरह कुरान और सुन्नत की तशरीह व तफसीर में किसी की बात उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक उसने मुतअल्लिका उलूम को बाकायदा हासिल करके माहिर असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी उनका अमली तजुर्बा ना किया हो। और अगर इस बात को कोई शख्स पापाइत से ताबीर करता है तो दुनिया का कोई इल्म फन इस पापाइत से खाली नहीं हो सकता। अगर इस चीज़ को आप पापाइत कहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन को, क्वालिफाइड ओपिनियन को, अगर आप पापाइत कहना चाहते तो भाई आपकी मर्जी है, आप जो भी कहें, लेकिन फिर ऐसे ही, ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो रिसर्च और जो डेरिवेशंस करनी है, इज्तिहाद करना है, ये इज्तिहाद का जो जो अमल है ना, ये इल्म के बगैर नहीं हो सकता। जिस चीज़ में आप इज्तिहाद कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप इज्तिहाद कर रहे हैं, वो उस फील्ड के इल्म के बगैर, और क्योंकि इज्तिहाद जो है ये नई चीजों के ऊपर अप्लाई करने को कहते हैं, तो इस वजह से रिसर्च लेवल का इल्म आपको चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। पिछली क्लास में जो बात हुई थी वो बिल्कुल डिफरेंट बात थी, कि कोई बात ऑलरेडी प्रोवन है, उस बात को जो है वो याद दहानी करवाना, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एविडेंस के जरिए से प्रोवन है उसकी याद दहानी कराना, इसके लिए बस उतना ही इल्म चाहिए होता है जो कि उस एग्जिस्टिंग एविडेंस के बारे में इल्म होता है, बस उतना इल्म चाहिए होता है। इसी वजह से जो उम्मत के अंदर इस्लाह का काम करने वाले हजरात आए ना, उनमें ज्यादा अक्सरियत कोई बाकायदा क्वालिफाइड और बहुत ही ज्यादा गहरा इल्म रखने वालों की नहीं थी, राइट। कुछ थे भी इस्लाह का काम करने वाले मशायख जो कि बड़े बड़े उलमा भी थे, लेकिन अक्सर जो है वो बस दरमियाने दर्जे के इल्म रखने वाले, फराइज का और अखलाकियात का, और बस क्योंकि उन्होंने कोई आगे से इज्तिहाद नहीं करना होता, उन्होंने तो खाली याद दहानियां करानी होती, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो जितना इल्म चाहिए उतना इल्म उनके पास होता है, ठीक है। जैसे हमारे जो सैयद ताइफा हजरत मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के जो शेख थे वो कोई ग्रेजुएट आलिम नहीं थे। किताबें उन्होंने थोड़ी सी पढ़नी शुरू करी थी, लेकिन दूसरे साल में उन्होंने वो सिलसिला ही छोड़ दिया था। लेकिन वो किसके शेख बने? इन बड़े बड़े जिबालुल इल्म के वो शेख बने, ठीक है ना। उनके पास नहीं था ये वाला इल्म, सही। उन्होंने याद दहानी वाला काम करना था ना, उन्होंने रूहानी तौर पे जो है वो गाइड करना था, गुनाहों से हिफाजत के लिए जो है वो लोगों की रहनुमाई करनी थी, तो उसके लिए तो इस इल्म की जरूरत नहीं थी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह इस फादर वॉज ए फ्रीड स्लेव, जी जजाकुमुल्लाह। ये बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह का, तो उनके वालिद मोहतरम जो थे वो गुलाम थे, फिर वो आज़ाद हुए, या फिर मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, तो उस ज़माने के बहुत ही बड़े बड़े माशाल्लाह, उन्होंने नॉन अरब स्कॉलर्स की लिस्ट यहाँ पे, हाँ ओहो सबसे बड़ी लिस्ट तो ये अजमी, ये जितने हमारे मुहद्दिसीन हैं सहाय सिरता के, ये तो तकरीबन सारे ही नॉन अरब हैं, अजमी है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम गज़ाली, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी हैं, इवन आज के दौर के अंदर भी ये सिलसिला चल रहा है। बहरहाल ये हो गया पापाइयत वाला जो जो गलत फहमी थी, इसका काफी शाफी जवाब। फिर उसके बाद अगला उनवान है कुरान करीम को अपने नजरियात के ताबे बनाना, ठीक है। यानी तफसीर कुरान के अंदर गुमराही के असबाब में से पहला सबब क्या था? नाअहलियत का होना। फिर उसके बाद गलत फहमियाँ कि जी उलमा की इजारादारी है, उलमा ने जो है वो पापाइयत को जो है फ़रोग देना शुरू कर दिया है, और फिर उसके बाद गुमराही का आया। फिर अगला सबब जिसको क्या कहते हैं यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी इतनी क्लियर ना भी हो किसी को, तो अगला सबब जो है वो पुराने करीम को अपने नजरियात के ताबे बनाना। और ये एक ऐसा जनरलाइज किस्म का ये एक मसला है कि जो कि हर जगह ही अप्लाई होता है बेसिकली, ठीक है। तो फरमाते हैं कि तफसीर कुरान के सिलसिले में दूसरी अजीम गुमराही ये है कि इंसान अपने जहन में पहले से कुछ नजरियात मुतय्यन कर ले और फिर कुरान करीम को उन नजरियात के ताबे बनाने की फिक्र करें, ठीक है। जैसे कि वो एक बड़ा मशहूर सा शेर है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, यानी कुरान को अपने नजरिए के मुताबिक किताबें करने की कोशिश करते हैं बजाय कि अपने आप को कुरान मजीद किताबें करने की कोशिश करें। जैसे कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने निशानदेही फरमाई है कि कदीम जमाने से बातिल फिरकों यानी शेख तैमिया रहमतुल्लाह की किताब का हवाला भी यहाँ पे दिया है, कदीम जमाने से बातिल फिरकों, जाहिर परस्तों और अपने वक्त के फलसफे से मरऊब लोगों ने तफसीर कुरान में यही गुमराह कुन तरीका इख्तियार किया है। यानी कुरान से मरऊब होने की बजाय अपने वक्त के फलसफे से मरऊब होना, ठीक है, यानी किसी दूसरे कल्चर, किसी दूसरे दीन के अंदर जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे अगर आप मरऊब हो जाएं तो फिर आप ही वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, और अल्फाज कुरानी को तोड़ मरोड़ कर अपने नजरियात के मुताबिक बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये तर्ज अमल दुनिया के किसी भी मामले में हक व इंसाफ के मुताबिक नहीं है। यानी इतना जनरलाइज किस्म का ये कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी ये अप्लाई नहीं हो सकता ना, कि आप किसी टीचर के पास जाएं और बजाय इसके कि आप उससे सीखें आप जो है वो अपनी जो भी आपकी प्री मेडिटेटेड ख्यालात हैं, आपके पहले से जो है प्री कंसीव्ड ओपिनियंस हैं वो आप उठा करके वो बोलना शुरू कर दें, वो टीचर के ऊपर जो है वो लगाना शुरू कर दें, उनके सामने झाड़ना शुरू कर दें, इसको हम कहते हैं। तो इस तरह से तो आप कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकते ना। खास तौर से कुरान करीम के बारे में ये तरीक़ेकार इख्तियार करना इतना बड़ा जुल्म है कि इसके बराबर कोई जुल्म नहीं हो सकता। कुरान करीम ने जगह जगह अपने आप को हिदायत की किताब करार दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिदायत की किताब, ठीक है। अब लफ्ज हिदायत के मानी क्या होते हैं, ठीक है, ये बड़ा अहम, यानी क्या कहते हैं, सोने की स्याही से लिखने वाला ये जुमला, हिदायत कहते किस चीज को है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि हिदायत के मानी ये हैं कि जिस शख्स को मंजिल का रास्ता मालूम ना हो उसे रास्ता दिखा, जिसको मालूम ना हो मंजिल का रास्ता उसको रास्ता दिखा, यानी जो गलत हो उसको ठीक करना, गलत रास्ते पे चल रहा हो उसे सही रास्ते की ओर बचाना, इसको हिदायत कहते हैं भाई, ठीक है। जिसे अपनी मंजिल का पता मालूम ना हो, अच्छा, लिहाजा कुरान करीम से हिदायत हासिल करने के लिए नागुजीर है कि इंसान अपने आप को उस शख्स की तरह खाली व जहन रखे जिसे अपनी मंजिल का पता मालूम ना हो, ठीक है, यानी ये सोच करके आए कि भाई मुझे नहीं पता अपनी मंजिल का, मैं यहां से ये सीखने के लिए आया हूं, ठीक है। इसके बाद दिल में ये एतिकाद पैदा करे कि कुरान करीम जो रास्ता बताएगा वही मेरे लिए सलाह व फलाह का मूजिब होगा, ठीक है, कुरान करीम का बताया हुआ रास्ता ही मेरे लिए मुमकिन करेगा कि मैं सलाह और फलाह कामयाबी तक पहुंच सकूं, ख्वाह इसे मेरी महदूद अकल कबूल करे या ना करे, ठीक है, यानी अपनी अकल को महदूद मानेगा, लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि ये मान रहे हैं ना कि मेरे पास इल्म नहीं है, सही का गलत का इल्म नहीं है, ठीक है। तो अकल जो है वो कंस्ट्रिक्टेड होती है इल्म से, जितना इल्म होगा उतनी अकल होगी, अब इल्म इसके पास कम है तो इसकी अकल भी जो है महदूद है। अगर मेरी अकल ऐसी ही काबिले एतमाद थी कि मैं उसके जोर पर सब कुछ मालूम कर सकता था तो फिर कुरान करीम की तरफ रुजू करने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। हमें भी इस तरह का वास्ता पड़ता रहता है, कुछ लोग जो है ना वो आते हैं, जी ये ऐसा कैसे है, ये ऐसा कैसे है, फिर जब उनको समझाना शुरू करो तो आगे से खुद ही जो है वो अपनी तरफ से जो है, तो एक दफा तो मैंने किसी को बड़ा जबरदस्त डांटा था कि भाई अगर आपको पहले से सब कुछ पता है तो आप पूछ क्यों रही हैं। अमूमन इस तरह की जो है ना वो आंटियां ही होती हैं इस तरह की, ठीक है, मतलब मर्द भी होते हैं, मतलब आजकल तो मर्दों में भी कम नहीं है, लेकिन ये मिजाज जो है ना कि नहीं मैं क्यों मानूं, मैं ना मानूं, क्यों पहले से कुछ पढ़ा लिखा इधर से कुछ सीखा लिया होता है तो फिर ना फिर वो पूछ क्यों रही है फिर आप भाई, आप क्यों पूछ रहे हैं जब आपको पहले से सब कुछ पता है। तो इस एतकाद के साथ जब इंसान कुरान करीम की तरफ रुजू करेगा और उन आदाब और शराइत को मलहूज रखेगा जो कुरान करीम से हिदायत हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं, तो उसे बिला शुबा हिदायत हासिल होगी और वो मंजिल मुराद को पा लेगा। इसके बरअक्स हुदल लिल मुत्तकीन, देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के पहले ही सफ़े के ऊपर, सूरह बकरा के पहले ही सफ़े के ऊपर हुदल लिल मुत्तकीन यानी ये वाली जो हिदायत है ना ये मशरूत हिदायत, जिसको तौफीक वाली हिदायत भी कहा जाता है, ये मशरूत है, ये सबके लिए नहीं, ठीक है ना। तो इस किस्म के लोग जो कि पहले से अपने आप को हिदायत पे समझ करके कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू नो लेट्स फाइंड आउट कि हाँ भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, और वैसे मुझे सब पता है लेकिन होता है ना कि भाई सब्जेक्टिव नॉलेज उसको कहते हैं, इधर भी पढ़ लो उधर भी पढ़ लो, इधर भी देख लो उधर भी देख लो, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिवली कुरान मजीद पढ़ रहा है उसके लिए हिदायत नहीं, ठीक है। इसके बरअक्स अगर किसी शख्स ने महज अपनी अकल की बुनियाद पर कुछ मखसूस नजरियात अपने जहन में पहले से बिठा लिए हैं और फिर कुरान करीम को उन मखसूस नजरियात की ऐनक से पढ़ना शुरू किया, तो उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की इस मुकद्दस किताब को हिदायत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि महज अपने अकली नजरियात की ताईद हासिल करने के लिए पढ़ रहा है। जाहिर है कि जो शख्स अपनी अकल पर इतना भरोसा करता हो और अपनी अकल को कुरान करीम का खादिम नहीं बल्कि माज अल्लाह कुरान को अपनी अकल और ख्वाहिशात का खादिम बनाना चाहता हो, कुरान करीम उसे हिदायत की रोशनी अता करने से बेनियाज है, ठीक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम के जरिए से उसको हिदायत अता नहीं करते हैं। दैट्स वाई नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हु स्टडी इस्लाम एंड कुरान डोंट गेट हिदायत, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एक्सेप्शंस, लेकिन एक्सेप्शंस पहली बात दे आर नॉट द रूल, ठीक है, और एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस आर इन माइनॉरिटी, ठीक है। तो एक आद को जो है वो जो मिल जाती है तो उसकी कोई ना कोई वजह बनती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हालात से उसकी नीयत से उसके तजुर्बात से ज्यादा बेहतर वाकिफ होते हैं हमारे मुकाबले में, हम तो जाहिर को देख रहे होते हैं ना, तो एक्सेप्शंस हो जाती हैं लेकिन दिस इज नॉट द रूल, ठीक है, मेजोरिटी ऐसा नहीं होता। तो बड़े बड़े जो है वो एक्सपर्ट्स होते हैं नॉन मुस्लिम्स के अंदर वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस कुड ऑल्सो बी बिकॉज दे मे हैव ए नियत दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली, हमें नहीं पता अल्लाह को पता है, तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी उसकी उस वाली नियत की वजह से, ठीक है। बड़ी यानी इससे बड़ी मिलती जुलती जो है ना वो एक बात परसों की क्लास के अंदर हुई है, परसों जो ख्वातीन में सूरह बनी इसराइल की तफसीर चल रही है ना, जिसको फिर हम जुमे के दर्स में भी एक दूसरे अंदाज में उसको लेके चल रहे होते हैं, लेकिन असल जो तफसीर की क्लास है वो तो ख्वातीन में चल रही है, तो उसके अंदर ये वाली बात आई थी कि कुरान मजीद जो है वो ऐसे ऐसे जो है ना वो यानी क्या है वो आयत जिसकी अभी चल रही है, नहीं तो इसमें जो है ना ये बात हो रही थी जी सूरह बनी इसराइल की जो आयत अल्लाह ताला की अभी जो आजकल जो मुस्तकिल काफी अच्छे से चल रही है कि हाँ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, कि तुम यानी तुम सब के सब इंसानों और जिन जो है ना वो मिल करके आ जाए ना तो भी कुरान के बराबर जो है ना वो कुछ नहीं बना सकते, उसके बराबर नई चीज बना सकते अगरचे कि वो एक दूसरे को असिस्ट भी करना शुरू हो जाए, कुरान मजीद इस तरीके से जो है ना वो उनको चैलेंज करता है, हम सबको चैलेंज करता है कि तुम जिन्नों को भी अपने साथ मिला लो, फिर भी तुम जो है वो नहीं कुरान के बराबर नहीं। यानी देखो तुम्हारे पास ये नेमत मौजूद है जिस नेमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, है ना, तुम सब मिल करके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। दिस इज अवेलेबल टू यू, दिस इज राइट देयर इन योर हैंड्स, इन योर होम्स, राइट। बल्कि बहुत सो ने तो उसको रटा हुआ भी है, उनके सीने के अंदर भी महफूज है, ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसके तहत जो है ना फिर बात हो रही थी, तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकद सरफना लिन्नास फी हादल कुरान मिन कुल्ली मथल, और हमने फिर करके इंसानों के लिए इस कुरान के अंदर हर चीज को बयान किया है, लेकिन फअबा अक्सरुन नास इल्ला कुफूरा, लेकिन अक्सर इंसान जो है ना वो नाफरमानी करते हैं और जो है वो नाशुक्री कर रहे होते हैं, ठीक है, इस नेमत की कदर नहीं करते जो हमने उनके हाथों में दी हुई, ठीक है। तो इसके ऊपर बात हो रही थी जिसका ताल्लुक आपके इस वाली बात से था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स के हैं। आप में से अक्सर को पता होगा इस हाजिज ये बहुत ज्यादा बात कर चुका है, इसके ऊपर बयान भी हो चुके हैं। एक स्कॉलर 1994 में अमेरिकन नॉन मुस्लिम स्कॉलर, उसने जो है वो सिविलाइजेशंस के ऊपर आर्टिकल्स लिखे, इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने जो है ना जहां पर सिविलाइजेशंस जो कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उन सिविलाइजेशंस की जो डेफिनेशन, जो तारीफ करी है ना कि भाई ये जो जो हिंदू सिविलाइजेशन है उसकी जो है वो ये खासियत है, और जो क्या कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन है उसकी ये उसकी सिफात हैं, ये उसकी खासियतें हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो उसकी ये खासियत हैं। जब उसने इस्लामिक सिविलाइजेशन का जिक्र शुरू किया है, मुस्लिम सिविलाइजेशन का जिक्र शुरू किया है, कहां से शुरू किया उसने? नॉन मुस्लिम है, मुसलमानों को डिफाइन कर रहा है, इस्लामिक सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन करता है? किसी को याद है या ख्वातीन ने है? क्या कुरान कैसे उसने डिफाइन किया मुसलमानों को, इस्लामिक सिविलाइजेशन को उसने कैसे तारीफ कैसे करी उसने इस्लामिक सिविलाइजेशन की, प्रेस की बात नहीं कर रहा, डिफाइन कैसे किया उन्होंने मुसलमानों को, उसने मुसलमानों को, एक गैर मुस्लिम ने, उसने ये कहा है कि मुस्लिम्स जो होते हैं ना, दे कंसिडर कुरान टू बी सर्टन, हतमी, फाइनल एंड एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड, विच इज द फाइनल एंड कंप्लीट ट्रूथ, एब्सोल्यूट सर्टनिटी मानते हैं ये कुरान को। दिस इज हाउ ही डिफाइंस द इस्लामिक सिविलाइजेशन। वो मोमिनीन को, मानने वालों को, ईमान वालों को, उनकी खासियत क्या, वो ऐसे डिफाइन करता है काफिर, ठीक है ना। और उसकी ये डेफिनेशन बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बिल्कुल सही उसने पहचाना है इस्लामिक सिविलाइजेशन को, ठीक है। ये और बात है कि हम जैसे मुसलमान जो हैं वो उस डेफिनेशन पे पूरे ही नहीं उतरते, ये तो हमारा मसला है ना, लेकिन जो इस जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी तो यही तारीफ है, वो कुरान को हतमी मानते हैं, बिल्कुल शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। खैर, आपकी इस सवाल से इसकी रिलेशनशिप ये है कि इतना सही नतीजे पे पहुंचने वाला शख्स भी खुद मुसलमान नहीं है ना। ये जो ब्रायन बीडम है, अब तक तो नहीं पता कि वो मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, अब हमें तो नहीं पता कि वो मुसलमान है ना, ना उसने जो है वो अपने किसी आर्टिकल में क्लेम किया, ना कभी बाद में उसकी कोई खबर सुनी। आपको अगर पता चले तो बता दिएगा, अच्छी बात होगी अगर मुसलमान हो जाए वो, ठीक है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद बावजूद भी वो मुसलमान नहीं हुआ, क्योंकि उसका मसला ही कुछ और था, वो तो सारा का सारा, अच्छा कुरान मजीद को उसने ऐसे पढ़ा है और ऐसे कोट करता है और ऐसे जो है ना वो उसके इवन के कुरान मजीद में इतनी दफा ये बात कही गई है और इतनी दफा ये बात कही गई है और ऐसे इन्होंने ये कहा है और ऐसे इन्होंने कहा है, उसके बाद के जितने आर्टिकल्स हैं उसके अंदर ये सारी तफसीलात मौजूद है, लेकिन मुसलमान नहीं हुआ, मान के नहीं दी उसने बात कुरान मजीद की, ठीक है। तो इतना कुछ होने, यानी ये जो स्कॉलर्स होते हैं ये इतना तफसील में जाते हैं और इतना इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर ना मानने की नीयत हो, हिदायत नहीं मिलती, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। बहरहाल तो फरमाते हैं मुफ्ती रिजवानी साहब भी यही कि ऐसा शख्स अल्लाह ताला की सही मुराद तक पहुंचने की बजाय अपनी गुमराही की दलदल में फंसता चला जाता है और उसे हिदायत की तौफीक नहीं होती। ऐसे लोगों के बारे में कुरान मजीद ने फरमाया है, युदल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। बिही हा की जमीर कुरान की तरफ पॉइंट कर रही है कि इस अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए से बहुत सों को गुमराह करता है और बहुत सों को हिदायत बख्शता है। ठीक है, तो असल में करने वाला कौन है? वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, कुरान मजीद उसी का तो कलाम है, उसी की तो सिफत है। लिहाजा कुरान करीम से हिदायत हासिल करने का तरीका ये है कि अपने जहन को दूसरे नजरियात से खाली करके एक तालिबे हक की तरह कुरान करीम की तरफ रुजू किया जाए और इसकी मुराद समझने के लिए जिन उलूम की जरूरत है उनको हासिल करके इसकी तफसीर मालूम की जाए और इस तरह जो कुछ साबित हो उस पर एक सच्चे मोमिन की तरह ईमान रखा जाए। जैसे कि उस काफिर स्कॉलर ने कहा कि इस्लामिक सिविलाइजेशन तो वो है जो कि कुरान को सर्टन मानती है, उसी की बात की लाज रख लें भाई उसकी बात की लाज रख लें, किसी और की लाज नहीं रखनी अगर तो, ठीक है ना, कि भी कुरान के ऊपर हतमी, मैं अमल सू युजज़ा बिही। कौन कह रहा है ये? कुरान अजीम शान, मैं अमल सू युजज़ा बिही, जो भी गुनाह करता है वो उसकी सजा पाता है। क्या हमें इस बात के ऊपर यकीन है? क्या हम इसको सर्टन समझते हैं कि जो भी गुनाह करेगा? इसकी तफसीर के अंदर तो कोई मुख्तलिफ मजाहिब भी नहीं है, मैं अमल सू युजज़ा बिही कि नहीं, इसकी तो कोई हतमी तफसीर नहीं है, तवातुर से साबित नहीं है, तो इस वजह से मुख्तलिफ ओपिनियंस हो सकते हैं इस आयत के बारे में, तो इस वजह से मैं उस ओपिनियन को फॉलो करता हूँ, हनफी ओपिनियन को फॉलो करता हूँ, मैं शाफी ओपिनियन को फॉलो करता हूँ, मैं हम्बली ओपिनियन को फॉलो करता हूँ, तो कोई इसके अंदर सर्टनटी वाली बात नहीं हो सकती। नहीं, इसमें कोई मल्टीपल ओपिनियंस नहीं है, एक ही ओपिनियन है, जो कोई भी गुनाह करेगा वो जरूर बिल जरूर उसकी सजा पाएगा। क्या ख्याल है, कितनों को इस पे यकीन है इस बात पे? या ये कि कुछ नहीं होता है? सभी करते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है? उसको तो सजा नहीं मिली, उसको तो नहीं मिली, वो तो इतना कामयाब हुआ हुआ है, वो तो इतना मशहूर हुआ हुआ है, वो तो इतना जो है वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, वो तो इतने इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा है। क्या ख्याल है, यकीन है हमें इस कुरान मजीद की? कुरान मजीद के ऊपर यकीन है? बच्चू नहीं बचोगे, कुछ कर लो, या तो तौबा करनी पड़ेगी। नदामत के हजरत अब्दुल्लाह आरफी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया करते थे कि मैं अमल सू युजज़ा बिही, या तो तुम्हें नदामत के आंसू बहा करके अपनी नदामत की आग में जलना पड़ेगा, नदामत की आग में, या ये कि तुम्हारी पिटाई होगी। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, तो नदामत की आग में जलना ये भी तो एक सजा ही है ना। ठीक है, पनिशमेंट? नहीं, कोई नहीं होता पनिशमेंट। ठीक है, वी डोंट थिंक अबाउट द आखरा, और कुरान मजीद जो है वो भरा पड़ा है आखरत से, हम जो है वो दीन भी, तो वो भी दुनिया की खातिर, वो भी दुनिया की कामयाबी, दीन भी दुनिया की कामयाबी की खातिर है। तो काफिर ज्यादा अच्छा समझ गया। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो दूसरी जो खवातीन की क्लास के अंदर इस आज ने बात करी थी कि ये जो बात है कुरान मजीद के बारे में, ये तो एक तो काफिर ने इस बात को समझा और एक मोमिन ने इस बात को समझा, ये नहीं कि किसी और ने नहीं समझा, कि एक ही ने समझा, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यही बात लिखी अपने एक मकाले के अंदर, बल्कि पढ़ी अपने मकाले के अंदर 1964 के अंदर। उन्होंने फरमाया कि जो पहली जनरेशन थी ना मुस्लिम्स की, उनको भी गैर मुस्लिम तहजीबों से वास्ता पड़ा था, पहली जनरेशन को भी गैर मुस्लिम तहजीबों से वास्ता पड़ा था, रोमन्स एंड पर्शियंस, फारस और रोम। ठीक है, अरब की तो कोई तहजीब ही नहीं थी, ये तो जो है ना वो छिपकली खाने वाले थे, ये तो उनके पास तो कोई तमद्दुन ही नहीं था, कोई तहजीब ही नहीं थी, तो अरब को फतह करने में कोई तहजीबी टकराव नहीं हुआ, फारिस को फतह किया उधर तहजीबी टक यानी नई तहजीब से वास्ता पड़ा, रोम को फतह किया उधर नई तहजीब से वास्ता पड़ा। क्यों इन तहजीबों को एडॉप्ट नहीं किया अरबों ने? सहाबे कराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने इन तहजीबों के कल्चर को, इनको एडॉप्ट क्यों नहीं कर लिया? वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, क्यों नहीं इसके ऊपर अमल किया? ठीक है, क्योंकि उनको यकीन था कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तहजीब, सिर्फ और सिर्फ कुरान की तहजीब, सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का जो कल्चर है, जो सुन्नत है, यही सही है और कोई दूसरा सही नहीं है। यही सिर्फ और सिर्फ एक ही कामयाबी का जरिया है, इसके अलावा और कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है, इसके सिवाय कोई कामयाबी का रास्ता नहीं, ना आखिरत की कामयाबी, ना दुनिया की कामयाबी, ना आखिरत की कामयाबी, ना दुनिया की कामयाबी, वो कहीं से नहीं मिलेगी, ना रोम से मिलेगी, ना फारस से मिलेगी, क्योंकि उनका ऐसा यकीन बना हुआ था कुरान मजीद के ऊपर और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर, पूरी पूरी उस जमाने की वर्ल्ड पावर्स में घुस जाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाद में जाकर के क्या हुआ, फिर जो है वो ऐसा यकीन जो है वो डामाडोल हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, अगरचे के पूरी ओवरऑल उम्मत के अंदर कमजोर नहीं पड़ गया था, बहुत सारे लोग अभी भी यकीन वाले मौजूद थे। तो बाद में जब तहजीब, नई तहजीबों से टकराव हुआ तो उनका मुकाबला कर लिया और बच के निकल गए, बच के निकल गए, अपनी इस्लामी तहजीब ही को गालिब रखा। लेकिन 1300 साल गुजरने के बाद तक फिर इन्हितात आ जाता है, इस उम्मत में भी आया, और फिर उसके बाद जो टकराव हुआ है, तो अब देख लें, अंग्रेजी के बगैर हमारा एक जुमला मुकम्मल नहीं होता, और हमारी कामयाबी का दारो मदार सारा का सारा जो है, वहां भी दीन अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम तो नहीं चलेगा दीन से खाली, हैं इससे खाली काम नहीं चल सकता, काम तो चलेगा IMF के जरिए से, काम तो चलेगा उनके उनके तौर तरीकों से, उनके कामयाबी तो मिलेगी उन्हीं के, हैं अकल भी कोई चीज़ होती है, और दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। ठीक है, क्या फर्क पड़ा मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जो भी हमारे बुनियादी अकायद अगर अभी भी सलामत है, तो अभी भी हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान थे, दरमियान वाले भी मुसलमान थे। फर्क क्या है, यकीन का फर्क है, सर्टिनिटी का फर्क है। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने भी जो है ना, वो अपने अपने इस इजारादारी को, काफिरों ने इसको तूल देने के लिए, इन्होंने भी इस बात को समझा, और इसका तरीका इन्होंने क्या निकाला, बिल्कुल वही बात जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यहाँ पे लिखी है, कि कुरान से हिदायत हासिल करने का सही तरीका तो यह है कि अपने जहन को दूसरे नजरियात से खाली करो। इन्होंने कहा कि हम ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएंगे और ऐसा मीडिया बनाएंगे, ठीक है ना, और इसको तुम्हारे लिए इतना इतना जरूरी बना देंगे, तुम्हारी सोचों में इसको इतना जरूरी बना देंगे कि तुम्हारे जहनों के अंदर ऐसे नजरियात पक जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, कि तुम कुरान मजीद पढ़ोगे भी ना, फिर भी उसको अपने इन्हीं नजरियात की बुनियाद पर तोलोगे, जो कि हमारे स्कूल सिस्टम के जरिए से तुम्हारे जहनों के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारे मीडिया के जरिए से तुम्हारे जहनों के अंदर पक चुके हैं, तुम कुरान पढ़ने के बावजूद तुम हिदायत नहीं हासिल कर सको, तुम हमारे गुलाम रहो, है ना, लेकिन हम तुम्हें ये बावर करा देंगे कि तुम्हारा गुजारा ही नहीं हो सकता हमारे स्कूल सिस्टम में पढ़े बगैर, राइट, तुम्हारा बच्चा जो है बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, तुम्हारा जो है वो पूरा का पूरा मुल्क जो है वो यानी जमीं बोस हो जाएगा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पढ़ाई बगैर जो है वो सिर्फ सवाल ही पैदा नहीं होता, और तुम बल्कि अपने कुरान से साबित करोगे इल्म हासिल करना कितना जरूरी है, हमारे स्कूल सिस्टम में इल्म हासिल करना तुम अपने कुरान से साबित करोगे, राइट, जैसा कि हम करते हैं, इकरा से शुरू हुआ है हमारे, हमारा दीन जो है वो इकरा से शुरू हुआ, और इल्म के फजाइल और ये फजाइल और वो फजाइल, हिदायत कहाँ से मिलेगी भाई। ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी जगह बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आज, अस्सलाम वालेकुम।